नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर विचार विमर्श के लिए संसद की 3 दिन की विशेष बैठक कल से शुरू होगी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां रोड शो कर रहे हैं। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में शपथ ली। देश का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 4.22% बढ़कर $860 अरब से अधिक रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के करीब। ईरान ने चेतावनी दी, अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगा तो खाड़ी और लाल सागर के रास्ते व्यापार बंद कर दिया जाएगा। सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 93.70% छात्र उत्तीर्ण हुए। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर विचार विमर्श के लिए संसद की 3 दिन की विशेष बैठक कल से शुरू होगी। वर्ष 2023 में पारित इस विधेयक को लागू करने के लिए सरकार 3 संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
यह विशेष बैठक संविधान में संशोधन करने के लिए बुलाई गई है ताकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण अधिनियम को लागू किया जा सके। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सदन के नेताओं को पत्र लिखकर सभी पार्टियों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह किया था। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि यह बेहद जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराए जाएं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी यह आश्वासन दिया कि महिला आरक्षण विधेयक संतुलित है और यह हर राज्य, समुदाय और क्षेत्र की आकांक्षाओं को ध्यान रखता है।
ये सिर्फ सरकार का बिल नहीं है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी और एक तरीके से पूरा देश का बिल है। सब मिलकर के एक आवाज और एक मत से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करेंगे।
भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी आर और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने दोनों सदनों के अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने और अपनी पार्टी के रुख का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विपक्षी दल महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में है, लेकिन विधेयक को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है उस पर आशंका है। नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद श्री खड़गे ने दावा किया कि विधेयक राजनीति से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में नागरकोइल में भव्य रोड शो किया। श्री मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दावा किया कि संसद का विशेष सत्र केवल महिला अधिनियम के लिए नहीं बुलाया गया है। डीएमके नेता और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ओटापिंडारम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा नेता गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने पर भाजपा चाय बागान श्रमिकों के कल्याण का पूरा ध्यान रखेगी। जलपाईगुड़ी में श्री शाह ने आश्वासन दिया कि चाय बागान श्रमिकों को भूमि अधिकार दिए जाएंगे और उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में कहा कि भाजपा नेतृत्व आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बंगाल में वोट हासिल करने के लिए धन का दुरुपयोग कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के विधानसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल श्रृंखला में आज बात तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित थिरुपरकुंद्रम विधानसभा क्षेत्र की।
मदुरई को दक्षिण तमिलनाडु का प्रवेश द्वार माना जाता है। पूरे जिले में लगभग 24,66,954 मतदाता हैं, जिनमें से थिरुपरकुंद्रम में करीब 3,07,783 मतदाता शामिल है। इस विधानसभा क्षेत्र में अब तक यहां AIADMK ने 9 बार, DMK ने 5 बार और कांग्रेस ने 1 बार जीत दर्ज की है। AIADMK के राजन चेल्लप्पा इस निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक हैं। इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। राजन चेल्लप्पा दोबारा चुनाव मैदान में है। वहीं DMK ने नए चेहरे के रूप में डॉक्टर कृतिका थंगा पांडियन को उतारा है और CTR निर्मल कुमार TVK पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले चरण के चुनावों के लिए मतदाता सूचना पर्चियों का वितरण शुरू कर दिया है। यहां 23 अप्रैल को मतदान होगा। आयोग ने कहा कि इसमें मतदाताओं का विवरण, मतदान केंद्र का स्थान, तिथि और समय तथा मार्गदर्शन के लिए क्या करें और क्या न करें की जानकारी शामिल है। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री होंगे। अन्य कैबिनेट मंत्रियों की सूची की घोषणा बाद में की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह और सामान्य प्रशासन सहित 29 विभाग रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सम्राट चौधरी की ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी स्तर का अनुभव राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में 4.22% बढ़कर 860 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। इसमें वस्तु और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। वहीं आयात में लगभग 6.5% की वृद्धि हुई है और ये 979 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसके परिणामस्वरूप पिछले वित्त वर्ष में कुल व्यापार घाटा बढ़कर 119 अरब डॉलर से अधिक हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में ये 94 अरब डॉलर से कुछ अधिक था। वस्तुओं का कुल निर्यात लगभग 441 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने देश भर में घरेलू एलपीजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।
ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप किए जा चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। कल लगभग 2100 रेड और सरप्राइज इंस्पेक्शंस की गई हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की है और लगभग 58 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव रजनीश ने बताया कि पिछले 2 महीनों में 20 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद फरवरी और मार्च महीने में उद्यम पोर्टल पर 20 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों ने पंजीकरण कराया है। आरबीआई ने बिना गारंटी के ऋण देने की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए की है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध लगभग समाप्त होने वाला है, क्योंकि ईरान के अधिकारी शांति समझौते पर सहमत होने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि वो सेना वापस बुला लेते हैं तो भी ईरान को देश के पुनर्निर्माण में 20 वर्ष लगेंगे। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहती है तो वो ओमान की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री व्यापार को भी अवरुद्ध कर देगा। इसराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमले जारी हैं। पश्चिम एशिया में आंशिक युद्ध विराम के बावजूद इसराइल की उत्तरी सीमा पर निरंतर अस्थिरता देखी जा रही है। एक रिपोर्ट।
दक्षिणी लेबनान में अभी भी इसराइली हवाई हमले जारी हैं। एक तरफ लेबनान अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम कराने की कोशिश कर रहा है, वहीं हिजबुल्ला का हथियार डालने या पीछे हटने से इनकार करना बातचीत में एक बड़ी रुकावट बन गया है। साथ ही वाशिंगटन इस संघर्ष को रोकने के लिए कई कूटनीतिक रास्तों पर काम कर रहा है। इस बीच ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ बातचीत से तनाव कम करने का प्रयास किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से टकराव अब खत्म होने के करीब है, हालांकि कुछ सैन्य कार्रवाई अभी भी बाकी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा चिंताओं के बीच भारत सुरक्षित और निर्बाध समुद्री आवागमन के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जयशंकर ऊर्जा बाजार में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों पर विचार विमर्श के लिए जापान द्वारा आयोजित एशिया शून्य उत्सर्जन समुदाय एजेक प्लस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में 0.04% अधिक 93.70% रहा। इस वर्ष भी लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों से अधिक रहा। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.99% दर्ज किया गया। तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा क्षेत्र में उच्चतम उत्तीर्ण प्रतिशत 99.79% और गुवाहाटी में सबसे कम उत्तीर्ण प्रतिशत 87.50 रहा। भारत ने फ्रांस के बोर्डो में यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड में पहला स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। मुंबई के श्रेया शांतनु मोधांदा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। केरल की संजना फिलोचाको ने रजत पदक और तमिलनाडु की शिवानी भरत कुमार ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 67 प्रतिभागी देशों में छठा स्थान हासिल करके अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की है। ये निर्णय आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता बिजली संयंत्र में हुए हादसे में मरने वाले मजदूरों की संख्या 17 हो गई है। वहीं 19 से अधिक मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। राज्य आपदा मोचन बल मौके पर बचाव अभियान में जुटा हुआ है। मणिपुर के गृह मंत्री गोविंद दास कोंथाजम ने लोगों से गलत सूचना फैलाने से बचने की अपील की है। इम्फाल में उन्होंने कहा कि कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण बिष्णुपुर जिले में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बिष्णुपुर जिले में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 2 वाहनों में आग लगा दी थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
सेंसेक्स 78,111 पर बंद हुआ और निफ्टी 24,231 पर दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 93.38 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर स्थिर बना रहा।
गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि जनगणना 2027 का पहले चरण का अभियान कल से कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। यह अभियान 15 मई तक चलेगा, जिसके दौरान प्रशिक्षित गणनाकर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्र करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सभी फास्टैग जारीकर्ता बैंकों को फास्टैग से जुड़े वाहन पंजीकरण नंबरों का तत्काल सत्यापन करने के निर्देश जारी किए हैं। ये निर्णय उन शिकायतों के बाद लिया गया है जिनमें फास्टैग रीडर द्वारा दर्ज किया गया विवरण वाहन की नंबर प्लेट पर प्रदर्शित वास्तविक पंजीकरण नंबर से मेल नहीं खाता है। आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। लखनऊ ने ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 5 विकेट पर 120 रन बना लिए हैं। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ 7वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर विचार विमर्श के लिए संसद की 3 दिन की विशेष बैठक कल से शुरू। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में शपथ ली। देश का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 4.22% बढ़कर 860 अरब डॉलर से अधिक रहा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के करीब। ईरान ने चेतावनी दी अगर अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगा तो खाड़ी और लाल सागर के रास्ते व्यापार बंद कर दिया जाएगा। सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 93.70% छात्र उत्तीर्ण हुए। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।